जय राधा माधवा कुंज विहारे जय राधा माधवा कुंज विहारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना पीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधवा कुंज विहारे जय राधा माधवा कुंज विहारे जय गौरनिताई जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद महाराज की भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैरिष्टके ग्रंथराष्ट्र मधुभागवतम दसम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तथा यशोदा रोहिण्यो एकं सकटं आस्थिते कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवण उत्सुके तथा यशोदा रोहिण्यं तथा यशोदा रोहिण्यौ एकं सकटमास्थिते एकं सकटमास्थिते रेजातुः कृष्णरामाभ्यं रेजातुः कृष्णरामाभ्यं तत्कथा श्रवण उत्सुके तत्कथा श्रवण उत्सुके तथा यशोदा रोहिण्यौ एकं सकटमास्थिते रेजातुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवण उत्सुके यथा यशोदा रोहिण्यां श्रवण उत्सुके Yeah. माताजी में से कोई बोल रहा शब्दार्थ इस प्रकार है इसका, तथा और यशोदा रोहिण्यौ। यशोदा तथा रोहिण दोनों ने एक शकटम, एक बैलगाड़ी पर आस्थिते बैठी रेजतु अत्यंत सुंदर कृष्ण रामाभ्याम अपनी माताओं के साथ कृष्ण तथा बलराम। तत्कथा कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं का श्रवण उत्सुके बड़ी ही उत्सुकता से सुनते हुए। अनुवाद तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई और इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि माता यशोदा तथा रोहिणी क्षण भर भी कृष्ण तथा बलराम से विलग नहीं की जा सकती थी। वे या तो कृष्ण बलराम के पालन पोषण में अथवा उनकी लीलाओं का कीर्तन करने में अपना समय बिताती थी। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी अत्यंत सुंदर दिखती थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय च नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनकदाल्भ्यं रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतां नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी को इस भागवत सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान श्री राधा गिरधारी के श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के कलिपात्र पावन श्री श्री गौर सुंदर भगवान के नित्यानंद प्रभु के सेवा कृपा प्राप्त हो और आप सभी के चरणों में दास का भी शतकोटि प्रणाम है। तो क्रमानुसार हम लोग भागवत का श्रवण करते करते दशम स्कंद के 11वें अध्याय तक पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, जैसे पहले चर्चा हो चुका है और भी संत वैष्णवों ने सुनाया है, सुनाते रहते हैं, नित्य सत्संग होता रहता है यहाँ पे, नित्यम भागवत सेवया चलता ही रहता है। बड़ा सौभाग्य है हम सभी का, कहने सुनने के अवसर प्राप्त होता है। तो क्रम से हम लोग श्रवण करते करते 11वें अध्याय तक पहुंचे हैं। इस अध्याय में भगवान के उन बाल चरित्रों का वर्णन होता है जब भगवान गोकुल में रहते थे और वृंदावन की लीलाएं, इन दोनों लीलाओं का बड़ा स्पष्ट से वर्णन प्राप्त होता है। किस प्रकार जब हमारे ठाकुर जी गोकुल में रहते थे, नंदग्राम में रहते थे, तो क्या क्या उनके साथ घटना घटी, घटना नहीं कहा जाएगा, लीलाएं कैसी ठाकुर जी ने किया, और वहां से वृंदावन में पहुंचने के उपरांत जो 12 वन होता है, एक उनमें से वृंदावन है, वनम वृंदावनम नामम, वृंदावन श्रेष्ठ है। हालांकि 12 वन, जो 12 वनों का वर्णन किया जाता है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। वृंदावन चरित्र में बताया जाता है, वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ में भगवान के अत्यंतिक प्रिय शिष्य प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वर्णन किया है कि वृंदावन 84 कोश ब्रजमंडल अपने आप में पूर्ण पावनी है, पूर्ण पवित्र है। क्या कहा जाए, वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने यह कहा है, कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलो विजंतु हो आनंद सचिदानंद मुपैति घनेता। जैसे जीव 84 कोश ब्रजमंडल के सीमा पे प्रविष्ट हो जाता है, सीमा में उतर जाता है, कहते यत्र प्रविष्टो सकलो विजंतु हो, कोई महात्मा की बात नहीं कहे जा रही है, कोई विद्वान की बात नहीं कहा जा रहा है, कोई महाभागवत की चर्चा नहीं हो रही है। जंतु शब्द का तात्पर्य होता है कीड़े मकोड़े भी यदि वृंदावन के सीमा पर पहुंच जाते हैं, कहते आनंद सचिदम घनेतम उपेति, उसे सचिदानंदमय स्वरूप का प्राप्ति होता है, वह है वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन की गलियों में ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया, लीलाओं को संपन्न की है, जिसको सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आज यहाँ पे सुखदेव जी इन बातों का चर्चा करते हैं। तथा यशोदारोहिण्याम एकम सकट माथिदे रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवण उत्सुके। बड़ा सुंदर शब्द है, संस्कृत हिंदी के भाई ही है, हिंदी संस्कृत के भाई है, तो कोई ज्यादा इतने कठिन नहीं है। यदि शब्दावली पर हम ध्यान देंगे बहुत सरल है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है संस्कृत। मन में हम मान लेते हैं कि कठिन है तब कठिन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, यदि उसे लोगों के सामने गाने में डर लगता है तो अच्छा गाने वाले का भी फेल हो जाता है, नहीं गा पाता। बहुत अच्छा कथा कहता है, यदि समाज में बैठ करके व्यासासन में बैठ करके वो भय करता है तो कथा भी नहीं कह पाता। तो इसलिए ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। पहले भारतवर्ष में सभी संस्कृत बोलते थे, ग्वालिनिया भी, अनपढ़ गवारिनी, अनपढ़ गवार भी सब संस्कृत बोलते थे। यह हमारी भाषा था, राष्ट्रभाषा जो भी कहो, यही भाषा थी। परंतु आज बहुत अभाव है, संस्कृत से लोग परिचित नहीं होते हैं, संस्कृत लोग समझ, आजकल तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेजों में, इसको एकदम साइड में रख दिया गया है। संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्या करना, अब मेलसों का भाषा पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी सीखो। हमारे हिंदू धर्म के लोग, हम इंडियन होते हुए भी, भारतवर्ष के लोग होते हुए भी कभी कभार अंग्रेजी में बातें करते हैं, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए। परंतु अपने जो भाषा है, मातृभाषा है, अपने भारत की जो संस्कृति है, उसे भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन बातों का वर्णन करते सुखदेव जी कहते हैं, तथा रोहिण्यम, तथा यशोदा रोहिण्यम एकम सकट माथिते। अब इसके पूर्व के श्लोक आप सुनिए, जिसका तात्पर्य न होने के कारण उसको लिखा नहीं गया है। कहते हैं, गोप्यो आरुढ़या रथा नूतन कुचकुम कुमकांतयः कृष्ण लीलया जगुह प्रीत्या निष्ककंठ्यः सुभाषसः। जब ब्रज में वह दुर्घटनाएं घटी, क्या दुर्घटनाएं घटी, भगवान बहुत छोटे से थे, 5-6 दिन के थे ठाकुर जी, वो पुतना नामक जो दुष्ट थी, पुतना बाल घातिनी ही, वो आई भगवान को दूध पिला करके मारना चाहिए। बाद में पुतना का भी पोलपटी खुल गया सबके सामने, ये कोई देवी नहीं है, सब समझ रहे थे लक्ष्मी है, न जाने स्वर्ग की कोई अप्सरा कोई देवी तो नहीं उतर आई नंदलाल को देखने के लिए। तो इसीलिए कोई उन्हें रोक टोक नहीं था, बाद में थोड़े ही देर में यह असलियत पता चल गया कि पुतना राक्षसी है और कंस के द्वारा प्रेरित किया गया था, कंस के द्वारा भेजी हुई थी यहाँ ब्रज में, जितने बालक है उनका संहार करने के लिए, ये पता चल गया। और यह घटना घटी, उसके उपरांत और एक घटना घट गया, और एक घटना घट गया गोकुल में। क्या घटना थी, तृणावर्त बड़ा दुष्ट था, बड़ा राक्षस था, उसका पूर्वजन्म का चरित्र भी शास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है। तो तृणावर्त वह भी आया, जो बहुत बड़े अंधी तूफान की तरह, भवंडर की तरह भगवान को अपने कब्जे में लेकर के भुजाओं में भर के ऊपर ले गया, और गोविंद ने उसका भी कल्याण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके भी गर्दन को दबो करके उसको भी खत्म कर दिए। तो ऐसे ऐसे कई घटनाएं घटने को उपरांत जो उपनंद थे, नंद महाराज के भाई थे, उपनंद जी ने एक निर्णय सुनाया, बोला ब्रजवासियों को बुला करके, क्योंकि सभी कन्हैया से प्रेम करते थे, सभी बाल कृष्णलाल से प्रेम करते थे। महाराज कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा था कि सब उनसे प्रेम करते थे, बड़े सरल चित्त के थे तो बहुत दुष्ट, बहुत चंचल। कृष्ण करुणामृत में कहते हैं ना, माया तपन्था पथि भीमरथ्याम दिगंबरः कोऽपि तमालवर्णम विनास्तहास्ते नितंब बिंबे धृता रमाकार सति चित्त वित्तम। कहते हैं बड़ा धृत है ठाकुर जी, विलोमंगल जी कहते हैं धृत रमाकर सति चित्त वित्तम। भगवान इतने चंचल है, इतने चंचल है, चित्त चोर है, मौका पाए तो महाराज उसके हृदय को भी चुरा ले। ठाकुर जी इतने बड़े चोर है, इतने चंचल, बड़ा धृत है। कहते हैं उनके समक्ष जाना, उनसे प्रीत करना, उनको देखना और वो आपको देख लिए तो सो आपकी संसार में और मन नहीं लगे कि आपकी काम तमाम हो गया। एक बार वो आपको देख लिए, आप जब तक उनको देख रहे हैं गिरधारी को तब तक सही है। गिरधारी के किसी दिन नजर आपके साथ लड़ गई तब तो हो गई गलयान, गया फिर भैया बेड़ा पार हो गया। ना पत्नियों के माताओं के ना घर में मन लगेगी, ना सास ससुर के सेवा में मन लगेगी, ना बाल बच्चों में मन लगेगा, ना घर गृहस्थी में मन लगेगी, ना पुरुष वर्ग के लोगों का, किसी का भी। एक बार चित लड़ गए तब तो गया। बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ना हरिदास जी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। भगवान के आंखों में जादू है। एक बार अगर किसी से लड़ गया, किसी से टकरा गई तब तो फिर हो गया, अब तो फिर समझो कि अब संसार के लायक ही नहीं रहेगा। उसी को कृष्ण करामृत में कहते हैं विल्लभ मंगल ठाकुर जी, कहते बड़े चंचल चित के ठाकुर जी। तो ऐसे प्रभु बहुत अपने लीलाओं से ठाकुर जी बाल कृष्ण लाल जी पूरे समग्र गोकुल वासियों को अपनी ओर आकर्षित करके रखे थे। और कृष्ण शब्द का तात्पर्य भी यह है, आचार्य पाद अपने टीका में वर्णन करते हैं सर्व आकर्षित कृष्ण, जो दूसरे को आकर्षित करता है अपने शक्ति से, अपने गुण से, अपने लीलाओं से, अपने रूप से, अपने प्रभाव से, जो दूसरों को आकर्षित करता है, सबके चित्त को जो अपनी ओर कर लेता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल गोकुल में बड़े सुंदर लीलाओं को वर्णन कर रहे थे, बड़े सुंदर लीलाओं को स्थापित कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे। और जब इन पुतना और त्रिनावर्त का वध हो गया, समस्त ब्रजवासियों के ऐसा लगा न जाने इस गोकुल में कई ऐसे विघ्न आ रहा है, न जाने बार बार हमारे लाला के ऊपर संकट आ रही है, इसलिए इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। बताइए भगवान से कितना प्रेम करते थे गोकुल, हालांकि कोई गलत जगह नहीं है। नंद महाराज की महल जहां पर था और उस गोकुल जहां पे ठाकुर जी पहले रहते थे, उस स्थान का बहुत सुंदर महिमा शास्त्र में प्राप्त होता है। परंतु समस्त सुख को, समस्त सुविधाओं को इन भक्तों ने नंद महाराज और ब्रजवासीगण उपनंद इत्यादि केवल कृष्ण के लिए परित्याग कर दिए। आप सोचिए कृष्ण से कितना प्रीत होगा महाराज, जो कृष्ण के लिए परित्याग करता है तो कृष्ण क्यों उसे प्रेम नहीं करेंगे। जो कृष्ण के लिए अपना संसार छोड़ा हुआ है, जो कृष्ण के लिए दान देता है, जो कृष्ण की प्रसन्नता देने की कोई कृत्य करता है, तो उसे ठाकुर जी क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। इन ब्रजवासियां बार बार कृष्ण के प्रसन्नता के लिए समस्त कृत्यों को कर रहे थे। जब भगवान 7 वर्ष के हो गए, वृंदावन की घटना है, ठाकुर जी एक बार कह दिए इंद्र पूजा के समय कि ये इंद्र का पूजन नहीं होगा, अब किसकी पूजा करे लाला, ना गोवर्धन की पूजा करे, क्योंकि ये गिरिराज हमारे भरण पोषण कर रहा है, गिरिराज के ऊपर घास उगते हैं, हमारे गैया उसे चरती है, गैया खाती है और गैया दूध दही दूध देती है, उसे हम दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, छचिया मक्खन मथुरा के गली गलियों में बेचते हैं। ब्रजवासियों का यही एक उपार्जन था, गोपालन और गोरक्षा यही उनका जीविका थी, और ब्रजवासियों से धनी संसार में दूसरा कोई। महाराज नंद महाराज की महल जो थी वो स्फटिक मणियों का थी, यहाँ ईट पत्थर के खंभे हैं, परंतु नंद महाराज की महल स्फटिक मणि या नीलन नीलम और हीरे से बना हुआ था, ऐसा सब मणियों से उनकी दीवार खड़ा था, खंबे खड़ी थी, छत खड़ा था। आप ज्यादा से ज्यादा 41 से मार्बल ला के लगा देंगे, जैसे प्रभु गिरधारी के ठाकुर जी के मंदिर में बहुत प्रदेश से दूर से आकर के मार्बल लग रहा है, आप लोग की संयोग से, आप लोग की अनुग्रह से। तो ज्यादा से ज्यादा हम कहां कहां की वस्तु लगा सकते हैं? ये तो ठाकुर जी के महल है, यहाँ तो और भी कुछ हो सकता है, और भी बढ़िया होना चाहिए, यहाँ पे हीरे जवारे का खंभे उठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परंतु अपने अपने घर गृहस्थ धर्म के विषय में जब कहा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा आप कौन सी खंभे, कौन सी दीवार आप बना सकते हैं, नीलम के, हीरे के? ना भैया, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु गोकुल में ऐसा था, तो वहां पे ठाकुर जी ने इतनी सुंदर ब्रजवासी गण इतनी सुंदर स्थिति को छोड़ करके कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वृंदावन में प्रविष्ट हो, वृंदावन चले गए। तो भगवान जानते थे कि ब्रजवासी गण, गोकुलवासी गण, ये लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी ने कहा अब इंद्र पूजा नहीं होगा, अब गिरिराज की पूजन होगा, तो समस्त ब्रजवासी गण गिरिराज के पूजन किए, जबकि सहस्त्र वर्षों से यह इंद्र पूजा चलती आ रही थी। कौन ऐसा 7 वर्ष के बालक आज अपने माता पिता से कह दे कि पिताजी मैया मुरी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और माता पिता वो करने लग जाए? कौन है? हाथ ऊपर करे, हम देखना चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं, कोई नहीं कर सकता। बालकों की बुद्धि पर कहीं, अरे तू चल हट, क्या बचपना करता, क्या खाएगा, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, अगर इस जीविका को बंद कर दे, ये नहीं करके वो करे तो क्या करें हम? ऐसे हम समझाने लगेंगे, नहीं मानेंगे उन बालकों के बात पर। परंतु कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, मात्र 7 वर्ष के बालक थे ठाकुर जी। यह सप्ताह यन उबाल ही, सुखदेव जी कहते हैं 7 वर्ष के थे ठाकुर जी। कहा कि गोवर्धन की पूजा होना चाहिए, सो गोवर्धन के ही पूजा हुआ। इसीलिए भगवान उन ब्रजवासियों से प्रेम करते थे जो मेरे लिए सब कुछ त्याग करते हैं, जो मेरे प्रसन्नता के लिए समस्त कृत्य को करता है। ठाकुर जी हम सभी के लिए कह रहे हैं, कह रहे कि संसार में जो भी जीव जगत में, इस संसार में जो भी प्राणी हमारे प्रसन्नता के लिए कृत्य करता है, हमारे प्रसन्नता के लिए कोई भी कृत्य को संपन्न करता है, हम उसके प्रसन्नता का सदा सर्वदा ध्यान रखते हैं, उसकी आनंद का सदा सर्वदा ध्यान रखते हैं, उसकी कल्याण का मार्ग हम स्वयं खोल देते हैं। परंतु कब? जब हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, जीवन जिएंगे, तब भगवान हमारे प्रसन्नता के लिए करेंगे। भगवान चाहे होते तो गोवर्धन को संकल्प से उठा सकते थे, परंतु ठाकुर जी ने अपने हाथ में छोटे कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोविंद ने धारण किया गिरिराज का। क्यों? क्या भगवान को कष्ट नहीं हो रहा था? अगर भक्तिभाव से हम दर्शन करते हैं, इस कथा को श्रवण करते हैं, तो लाला कितने छोटे से होंगे, कितने कोमल शरीर होगा, तो भगवान 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत छोटे से उंगली पर उस गिरिराज पर्वत को, 25 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई पर्वत को धारण कर रखा। कितना बड़ा कष्ट ठाकुर जी ने उठाया, किसके लिए? इन ब्रजवासियों के प्रसन्नता के लिए। वो संकल्प के मात्र से उठा सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया कन्हैया ने। ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजवासी हमसे प्रेम करते तो हम भी तुमसे प्रेम करते, तुम हमारे लिए, हमारे कहने के कारण तुमने इंद्र पूजा छोड़ करके गिरिराज का पूजन किया, इसीलिए हम तुम्हारे प्रसन्नता के लिए गिरिराज पर्वत को भी धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी ने अपने छोटे से उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। हालांकि एक और दृष्टिकोण से जब देखा जाता है, भगवान को पीड़ा नहीं है। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे, महाराज परीक्षित कांप उठे, वावरे बाब, इतना विशाल पर्वत छोटे से कन्हैया धारण कर लिए, कैसे ये संभव है? कांपने लगे। तब वो ब्रजवासी गणों के कथाओं को सुनाते, कहते हैं कि नहीं राजन, बात ऐसा नहीं है, यह सप्ताह यनो वाले ही करने के न ले लिया सकृत विभ्रम गिरिवरम पुष्करम गदराड़ी हुआ। कहते हैं ये तो ऐसे उठा लिए उस गिरिराज को जैसे पुष्कर से सरोवर से एक गजराज एक कमल की पुष्प को अपने सुंड से उखाड़ ले, ज्यादा कष्ट नहीं होता। वैसे ही ठाकुर जी ने उस गिरिराज को उठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है जो भगवान से प्रीत करता भगवान उनसे प्रेम करते हैं। तो यही बात है, इसी अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। ब्रज में सबसे ज्यादा धन धान्य था, ब्रज में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। क्या कहा जाए, ब्रज में क्यों इतना धन संपत्ति थी जानते हैं? एक तो भगवान के प्राकट्य के कारण, गोपियां कहती ना, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयात इन्द्रा सास्वादात्र ही। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जैसे प्रभु आपके प्राकट्य जब से इस ब्रज में हुआ, जिस दिन आप इस ब्रज में आ गए उस दिन साक्षात धनलक्ष्मी भी इस ब्रज में प्रकट हो गई। आपकी प्राकट्य के कारण आप जब से यहाँ आए तब से धन धान्य से ब्रजमंडल पूरित हो गया। परंतु यह तो गोपियों की भाव थी, इससे पहले भी ब्रजमंडल पूरित था धन धान्य से। क्यों जानते हैं? एक कारण सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, मात्र एक कारण के फलस्वरूप ब्रजमंडल में कोई धन संपत्ति का अभाव नहीं थी। वो कारण क्या है जो कल हम लोगों ने श्रवण किया? कहते हैं गोधनानी पुरस्कृत्य। ब्रजवासियों का धन क्या था, ब्रजवासियों का प्रथम कृत्य क्या था? गो माता की सेवा। ब्रजवासियां सब गोपालन करती थी, करते थे। आज के लोग जैसे भैंस पालते हैं, भैंस के तावेला होती है बड़े बड़े, यह बहुत बड़ा अनर्थ है। हम पापी के भागी है स्वयं, हम हिंदू धर्मी के लोग स्वयं पापी के सबसे बड़ा अधिकारी है। गौ माता के कत्ल के पीछे हमसे बड़ा पाप, हमसे बड़ा अपराधी दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम ही भैंसों को पाल करके अपने घर पर रख करके और तावेला के माध्यम से उसे रख करके यही प्रोत्साहन दे रहे हैं कसाईयों को कि तुम गौ माता को कसाई घर ले जाओ। यदि यह न होता, गौ माता की पालन होता तो गौ माता की आदर भी होती संसार में। इसीलिए भैंस के पालन के उपरांत गौ माता की कोई आदर नहीं होती है, गौ माता सब कसाई घर में जाती है। कहा जाता है पुराण में, जब तक गौ माता को सुरक्षा न प्राप्त हो जाए तब तक संसार में सुख समृद्धि नहीं हो सकता। यही गौ माता का बिल्कुल भरण पोषण किया जा रहा था। गौ माता के सहस्त्र सेवाओं में लगे हुए थे ब्रजवासी, बस एक ही इनका जीविका थी। सवेरे उठे, गौ सेवा करे, गोदहन करे, गौ को चराने के लिए ब्रजमंडल में ले जाए, गोवर्धन इत्यादि में ले जाए, गौ चराते थे, फिर आते थे, गौ सेवा में उनकी दिन जाता था, गौ सेवा और कृष्ण सेवा में। इसीलिए ब्रजमंडल में धन धान्य की कोई कम नहीं थी। नंद महाराज ने कितना गौ लुटाई, कितने गज लुटाए, वो भी हीरे जवारे से श्रृंगार करके, गो का गज का इतने सारे हीरे जवारे से श्रृंगार करके सहस्त्र गोदान नंद महाराज ने किया, सहस्त्र गजदान नंद महाराज ने किया। कौन आज इतना बड़ा दानी है, कहिए सहस्त्र हाथियों का दान कर दे, क्योंकि आज धन ही इतना नहीं है। धन इसलिए नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि गौ माता की सेवा वो नहीं कर रहा है। विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए बात पर, ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, गौ माता के सेवा करने वाले को कभी भी धन धान्य से अभाव नहीं रहता। आप प्रत्यक्ष रूप में ब्रजमंडल जाकर के बरसाना में देख आइए, बाबा जी के आश्रम में, बाबा के आश्रम में 20,000 गौ हैं, रमेश बाबा के आश्रम देख आइए, वहाँ इतनी भव्य तरह से सेवा होती है गौ माता के, क्या कहा जाए, इतनी वैभव आती है वहाँ, इतनी पैसा आती है, अदस्त्र पैसा आता है गौ माता के नाम से। राजस्थान चले जाइए, 3,00,000 गौ है एक जगह, देखिए वहाँ पे कितनी धन धान्य है, कितनी पूरी लक्ष्मी, साक्षात धन लक्ष्मी मानो वहाँ बैठ गई है, कोई चीज के अभाव नहीं होते। ये गौ माता की सेवा का फल है। तो ब्रजवासीगण गौ माता को बहुत सेवा करते थे, इसीलिए जिनका धन थी, सुखदेव जी कहते गो धनानी पुरस्कृत्यः, ये समस्त जो ब्रज में गोकुल में जो उपद्रव्य मचने लगा कन्हैया के साथ असुरों का, जो लीलाएं हुई बार बार कन्हैया के जीवन में कोई समस्याएं आने लगी ऐसा गोकुलवासियों को लगा, तब उपनंद जी ने एक उपाय रचा, कहा कि हमने एक स्थान देख रखा है, वृंदावन नाम है, वनम वृंदावन नामम। उस वृंदावन में यदि आप लोग हमारे बात मानो तो हम समस्त गोकुलवासी अब वृंदावन चले जाते हैं, यहाँ गोकुल छोड़ करके, क्योंकि यहाँ कन्हैया को बार बार विपत्ति आ रही है, बार बार विपत्ति आ रही है। ये बात जब उपनंद जी ने कहा, उपनंद के बात में समस्त ब्रजवासी गण गोकुलवासी गण बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि हाँ जो आप कह रहे हैं हमें स्वीकार है, भले गोकुल में हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है परंतु कृष्ण को तकलीफ हो रहा है, कृष्ण के जीवन में कोई समस्याएं आ रही है, जहाँ कृष्ण को समस्याएं आ रही है वहाँ पे हम, हमारे लिए भले कितना भी सुख हो हम समस्त सुखों को त्यागने के लिए तैयार है, चलिए चलिए वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन की ओर अब ये सब रवाना हुए हैं गोकुल से। अब कैसे दशा यहाँ पे इस बातों का वर्णन होता है, वृधान बालान स्त्रियो राजन सर्वो उपकरणानि च, वृद्ध बालक स्त्री ये सबको आगे आगे बैलगाड़ी में बिठा करके भेज दिए, और पीछे पीछे अनह आरोप्य गोपाल यतायास शासन, ऐसे समस्त गोपाल ब्रजवासी गण पीछे पीछे जा रहे थे जिनका धन गोमाता थी, और सब अपने अपने श्रृंगार किए हुए थे बैलगाड़ी पर बैठ करके वृंदावन की ओर जाने लगे। कितना सुंदर दृश्य होगा, पहले बैलगाड़ी थी। वास्तव में भागवत कथा, पूज्य महाराज जी कहते हैं ना, भागवत कथा गांव के रहने वाले बहुत अच्छा समझेंगे, शहर के लोग क्या समझेंगे, बैलगाड़ी कोई देखा ही नहीं होगा, बहुत कम लोग देखे होंगे। बैलगाड़ी यही रथ है गांव वालों का, महाराज तबीयत खराब हो जाए तो बैलगाड़ी में जाते हैं, तीर्थायाटन भी बैलगाड़ी में करते हैं, पहले तो क्या कहा जाए बरयात्री भी बैलगाड़ी में जाते थे, शादी ब्याह में भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। आज तो मॉडर्न युग है, इसलिए युग के परिवर्तन से, समय की अतिभा से सब कुछ परिवर्तन हो गया। आज अगर छोटे से छोटे गाड़ी लेके बरयात्री में भी जाते हैं, बरजात बन करके जाते हैं शादी ब्याह में, तो कहते क्या है छोटा सा गाड़ी ला, मर्सिडीज लाना चाहिए था, होंडा सिटी लाना चाहिए था, स्कॉर्पियो लाना चाहिए था, BMW लाना चाहिए था, इन नानो लेके आया है, अल्टो लेके आया है। लोग कहते हैं महाराज लोगों की चित्त वृत्ति कितना दूषित हो चुका है, भोग की प्रवृत्ति में कितनी मात चुके हैं। तो ऐसे ब्रजवासी गण उनका एकमात्र साधन यही था बैलगाड़ी, और उस बैलगाड़ी में समस्त वृद्ध और बालकों को स्त्रियों को बैठा करके आगे आगे और पीछे पीछे गोपाल सब गोमाताओं को लेते लेते चल रहे थे। ऐसे परिस्थिति में क्या कहते हैं सुखदेव जी, ऐसे अवसर में कहते हैं, गोपियो रूढ़ रथाहा नूतन कुछ कुमकुम कांतय, गोपियां सब अपने शरीर के अंग कांतियों को श्रृंगार की हुई थी और रथ पर सब आरूढ़ थे, बैठे हुए थे। रथ क्या है, बैलगाड़ी, दूसरा मत समझिए रथ, रथ है रथारूढ़ का अर्थ है बैलगाड़ी पर सब बैठे हुए थे, वही उनका रथ है। और कृष्ण लीलया जगहु प्रत्या, बड़ा सुंदर शब्द का उपयोग करते, ध्यान रखिए यही हमारे चर्चा के विषय है आज, कृष्ण लीलया जगहु प्रत्या, कृष्ण लीला का गायन करती करती गोपियां सब बैलगाड़ी पर बैठे बैठे कृष्ण लीलाओं का गायन करती करती जा रही थी। कृष्ण लीलया जगहु बोल रहे थे, वो भी कैसे, प्रत्या, यह हमारे लिए शिक्षा है, हम सभी भक्तों के लिए शिक्षा है, जब हम कथा कहते हैं तो प्रेम से कहना चाहिए, जब श्रवण करते हैं तब भी उतना प्रेम से श्रवण करना चाहिए, प्रेम पूर्वक प्रत्या प्रीति के साथ, क्योंकि प्रेम की वस्तु है, कहते हैं ना ये बहुत सूक्ष्म वस्तु है, इसे सावधानी से पकड़ना, बच्चों के हाथ में नहीं देते शीशे वाले चीज, अरे बड़ा सूक्ष्म चीज है, गिर देगा तो टूट जाएगा फूट जाएगा, सावधानी से इसे पकड़ो, अरे संभाल के पकड़ो, देते समय भी कहते पकड़ा छोड़ू अब, सूक्ष्म वस्तु के प्रति इतनी लोभ होता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म वस्तु है कथा, ऐसे ही प्रेम पूर्वक इसे ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं ब्रजवासीगण कृष्ण लीलया जगहु, कृष्ण के बाल चरित्र को, भगवान की लीलाओं को स्मरण करते करते कहते कहते है निष्कंठ सुवास सह, जो अपने गले पर लकेट इत्यादि धारण किए हुए थे, वो लकेट क्या है, आजकल के जो डिजाइन लकेट सब पहनते हैं, कोई सिंह का पहनता है, कोई बाघ का पहनता है, कोई सुअर का, कोई बिल्ली का गले पर टांग देता महाराज, ये सब नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के चिन्ह होता है, उन चिन्ह को लकेट के रूप में धारण किए हुए थे, तथा ब्रजवासियों के पास धन धान्य से कोई कमी नहीं थी, तो स्वर्ण के नीलम के हीरे के बने हुए ऐसे लकेट ब्रजवासी गण अपने गले में धारण किए थे। महाराज आज तो डुप्लीकेट पहन करके यदि समाज में कोई यात्रा करता, पता चला कि माता के कान नोच लिया, ये ज्यादा यूपी बिहार दिल्ली में होता है, गाजियाबाद में होता है, हमने देखा। एक माता जी, हम गाजियाबाद मंदिर में कथा कर रहा था, वो मंदिर ऐसा है कि जहाँ बैठ के व्यासपीठ पर कहते हैं वहां से सामने रोड पे दिखता है, माता जी आए प्रणाम करी और जैसे जाने लगी तुरंत वही चप्पल पहन रही थी, द्वार पर दो जने बाइक से आए, उसके कान नोच करके ले गए, कान से छीन करके ले गए, जबकि वो डुप्लीकेट थी, वो डुप्लीकेट वाला कान फूल पहनी हुई थी वो, बता। और नीलम हीरे पहन ले तब तो फिर हो गया, फिर तो गई माता, अब ये संसार में दिखाई नहीं पड़ेगी, ऐसी स्थिति है आज समाज में। परंतु पहले कहने का तात्पर्य है भारतवर्ष इतने परिपूर्ण था क्योंकि सभी जगह गौ माता की सेवा हो रही थी, इसलिए कोई एक दूसरे के धन के प्रति चोरी की प्रवृत्ति नहीं थी, आसक्ति की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि स्वयं सब धन धान्य से पूरित थे, और ब्रजवासी गण तो थे ही, साक्षात लक्ष्मीपति नारायण जहाँ पर है, साक्षात श्री जी जहाँ राधा रानी हो, तो वहां पे कहाँ धन धन की कमी रहेगी। तो ऐसे ब्रजवासी गण बड़ा सुंदर ठाकुर जी के बाल चरित्रों का गायन करते करते जा रहे थे, तो आज के इस श्लोक में क्या कहते हैं, तथा यशोदा रोहिण्यम एकम शकटमास्थित। अब कौन कौन रथ पर बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, उन वासों का वर्णन हो रहा है। सभी बाल वृद्ध स्त्रियां बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, पहले आपने सुना, अब विशेष रूप से विशेष रूपेण सुखदेव जी यहाँ पर रोहिणी और देवकी के, रोहिणी और यशोदा के विषय में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों बहुत भाग्यशाली है। सुखदेव जी मानो ऐसा यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है सुखदेव जी इन दोनों भक्तों के नाम लेकर के स्वयं आनंदित हो रहे हो, मुक्त आत्मा है सुखदेव जी, परंतु ऐसे विरक्त निराले उच्च कोटि के दो संत के नाम लेकर के सुखदेव जी माने प्रसन्न हो रहे हो। इसलिए बार बार सबके बात कहने के, बाल वृद्धा सबको एक साथ में मिला करके कह दिए, स्त्रियां वृद्ध बालक सब रथ पे बैठ करके बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं वृंदावन की ओर, एक साथ में निपटा के सबके सब कह दिए। परंतु अब जब यशोदा रोहिणी की बात आई तो स्वयं अपने मुखारविंद में कहते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, कहते हैं यशोदा तथा यशोदा रोहिणियों, रोहिणी और यशोदा ये दोनों ने एक रथ पर बैठे हुए थे, एकम रथम आस्थिता, एक बैलगाड़ी में दोनों बैठे हुए थे, और अपने अंक में रोहिणी जी ने अपने अंक में दाऊजी को ले लिए थे, और यशोदा जी ने अपने गोद में बालकृष्ण लाल को ली हुई थी। कितना सुंदर दशा होगा, बैलगाड़ी में ऐसे दोनों माताएं दोनों लालाओं को पकड़ करके हृदय में लगा करके वक्षस्थल में लगा करके बैठी हुई है और ऐसे यात्रा कर रही है, और क्या कर रही है, सुखदेव जी कहती है, कहते हैं रेजतु कृष्ण रामाध्यम, ये उनके अंक में थे कृष्ण और राम बलराम, और तथा श्रवण उत्सुके, तत्कथा श्रवण उत्सुके, ऐसे बालकृष्ण लाल को दाऊजी को अपने अंक में लेकर के रोहिणी और यशोदा जी क्या कर रहे थे,
उन्हीं बालकृष्ण के, उन्हीं दाऊ जी के जो बाल चरित्र है, उन लीलाओं को बड़ा उत्सुकता पूर्वक गायन कर रहे थे, लीलाओं को बड़ा श्रद्धा के साथ कहती कहती जा रहे थे, कह रहे थे, सुन रहे थे। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कथा कथा श्रवण करना, यही बताई जा रही है। इसी दशम स्कंध के अंतर्गत भी यही बात बताया जाता है, कथा श्रवण करना सर्वोत्कृष्ट साधन है जीव का, मुक्ति का। इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। इसी भागवतम के दशम स्कंध में श्रवण के ऊपर, कथा के ऊपर श्रवण भक्ति के आचार्य श्रील परीक्षित महाराज जी ने दो सुंदर उद्गार दिए हुए हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। दो सुंदर उद्गार दिए हुए हैं कि कथा श्रवण किस प्रकार जीव का मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट कारण बनता है, सर्वोत्कृष्ट साधन है। इससे बढ़कर के दूसरा और कोई साधन नहीं हो सकता जीव के हृदय की शुद्धि का और परमात्मा की लीला में, भगवान की लीला में प्रविष्ट कराने का, भगवत साक्षात कराने का, साक्षात्कार कराने का, कथा से बढ़कर के दूसरा कोई साधन। दो सुंदर सुंदर उद्गारे परीक्षित जी ने दिए हुए हैं। ये संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, तीन कोटि के लोग कहते होते हैं संसार में। एक है विषयी, जिसको हम भोगी कहते हैं, कहते हैं ना भोगी व्यक्ति। दूसरा है मुमुक्षु, ध्यान से सुनिए महत्वपूर्ण बात है। तीसरा है मुक्त, मुक्त आत्मा। ये तीन कोटि के लोग हैं। चौथा होते हैं क्या? चौथा नहीं होते हैं। ये संसार में तीन कोटि के प्राणी होते हैं, एक होता है विषयी, दूसरा होता है मुमुक्षु, तीसरा होता है मुक्त, मुक्त आत्मा। चौथा कोटि के प्राणी होते ही नहीं है। कहते हैं कथा इस तीन कोटि के लोगों का भी कल्याण करने वाला है, तीन कोटि के लोगों का भी साध्य है कथा। और क्या कहा जाए? अब आप श्लोक सुनिए, भागवतम में उद्गार में परीक्षित जी क्या कहते हैं। कहते हैं निवृत्त से रूपगीयमाना भवो सधात् सूत्र मनोभिरामान। का उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान बुरे जेत बिना पशुघ्ना। निवृत्त तस्य रूपगीयमाना कथा समस्त तीन कोटि के लोगों का, मुक्त आत्माओं का भी साध्य है। मुक्त आत्माओं का भी कथा एकमात्र साध्य है भगवत लीला में प्रविष्ट कराने का। निवृत्त तत्सी रूपगीय मानात, कहते हैं जो मुक्त मुक्त आत्मा किसको कहते हैं? मुक्त आत्मा कौन है? मुक्त आत्मा कौन है? जिसका इस लौकिक से पारलौकिक तक, इस संसार से ब्रह्मलोक पर्यंत, सत्यलोक पर्यंत जिसके चित्त में भोग की इच्छा न हो, उसको मुक्तात्मा कहते हैं। प्रार्थना करते हैं ना काले नाग की पत्नियां, मुक्तात्मा के विषय में कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वांछन्ति यत पाद रजोभिषेक। या रजो प्रपन्ना कहते हैं इसको, कहते मुक्त आत्मा जिसको इस लौकिक से यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत कोई चीज कोई वस्तु की प्राप्ति का कामना ना हो, उसको मुक्त आत्मा कहते। ऐसे मुक्त आत्मा का भी साध्य बनता है कथा, और मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए कहा जाता है। तीनों चीज का बातें, तीन वर्ग के लोगों का वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत होता है। दूसरा है मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए क्या कहा जाता है, भव औषधात। मुमुक्षु कौन है, मुमुक्षु किसे कहते हैं, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, यानी कि जो इस संसार के संस्कृति चक्र से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो, संसार से बहुत उसकी मन भर गया है, अब बस हमें मुक्ति चाहिए, बस यहाँ अब रहना नहीं है, संसार के संस्कृति से जिसका चित्त वृत्ति परे हो गया हो, जो मुक्ति चाहता है, जो यहाँ परेशान महसूस कर रही हो, कर रहा हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे मुक्ति का इच्छा रखने वाला उसका भी उद्धार, उसका भी साध्य कथा ही है। तीसरा कोटि के लोग बाकी रह गया, तीसरा है विषय। विषय का निंदा नहीं होती है, विषय तो देह का एक धर्म है, कौन विषय नहीं बता, हम स्वयं कहता हूँ विषय है, ईमानदारी से हम स्वीकार करता हूँ कि मैं विषय हूँ। विषय किसे कहते हैं, विषय का तात्पर्य क्या है, विषय देह का एक धर्म है, विषय का निंदा नहीं होता, निंदा होता है पामरत्व का। पामरत्व किसे कहते हैं, जो शास्त्र के विधि के बिना, शास्त्र के विधि के अलावा, जो मनमान्य ढंग से बिल्कुल स्वेच्छाचारिता से भोग करता है, उसको पामरत्व कहते हैं। ऐसे पामरत्व का भी उद्धार साध्य एकमात्र कथा ही होता है। संसार में सब विषय ही है। अब चलो दूसरे की बात छोड़ो, हम अपने विषय में कहते हैं, हम स्वयं विषय ही, हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, हम विषय ही है, हम मानते हैं, आसन में बैठ करके हम स्वीकार करते हैं, हम विषय ही है। विषय किसे कहते हैं, विषय उसे कहते हैं, इसका तात्पर्य यह बताया जाता है, कहते हैं जो विषय का, इंद्रियों का जो विषय होता है, जब हम उसे सेवन करते हैं, जब इंद्रियों को उसका विषय का प्राप्ति होता है, उस समय उस विषय का रसास्वादन का अनुभव होना, उसको विषय कहते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ, हम जो भोजन ग्रहण करते, अभी भी हमें खट्टा मीठे का अनुभव होता है, अभी भी हमें खट्टा मीठे की अनुभव होती है, भला बुरा का अनुभव होता है, स्वाद का भी अनुभव होता है, बेस्वाद का भी अनुभव होता है, इसको विषय कहते हैं। यानी कि इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त होते समय, विषयों को हम ग्रहण करते समय, वस्तु को ग्रहण करते समय, यदि उसका रसास्वादन का अनुभव हो, आंख में देखते समय यदि हमें अच्छा लग रहा है, तब समझो अभी भी हम विषय है। सुनते समय कोई चीज अच्छा लग रहा है हरि कथा के अलावा, तब तो समझो हम विषय है। कोई कोई परफ्यूम के सुगंध यदि हमें अच्छा लग रहा है, तो समझो हम भी सही है। खाद्य भोजन ग्रहण करते समय स्वाद का अनुभव होने लगता है, मीठा खटा खटा का पता चल रहा है, तो ये विषय का लक्षण है, इसको कहते विषय। तो ऐसे विषय व्यक्ति का भी कथा एकमात्र साधन होता है, बताया जाता है। और कहते हैं मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य यह है, चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहे, यदि हम कथा के आश्रय लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। यह जो श्लोक हमने कहा निवृत्त तत्सी उपगी माना, यह जो श्लोक के ऊपर समस्त आचार्यों ने अपने अपने टीका में बड़ा सुंदर भावों का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के ऊपर चक्रवर्त ठाकुर चक्रवर्त पाद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, अपना भाव देते हैं। बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने भी इस श्लोक के ऊपर कहे हैं, वीर राघव चंद्र पाद जी ने भी कहा है, विजयध्वज गोस्वामी महाराज ने भी कहा है, सनातन गोस्वामी पाद जी ने भी इसके ऊपर टीका किए हुए हैं, जीव गोस्वामी पाद जी ने भी संदर्भ में इसका टीका किए हुए हैं, बल्लभाचार्य जी ने भी किया है, बहुत आचार्यों ने इसी श्लोक के ऊपर अपना अपना मंतव्य दिए हुए हैं, टीका दिए हुए हैं, टीका लिखे हैं। कहते हैं अब आप एक जने की टीका सुनिए इस श्लोक के ऊपर, श्रीधर स्वामी की टीका से सुनिए। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कथा के ऊपर, इस श्लोक के ऊपर कहते हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं, श्रीधर स्वामी की बातें हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं, यदि हम कथा के आश्रय लेते हैं, चाहे हम मुमुक्षु है, विषयी है या मुक्त है, यदि कथा के आश्रय लेते तो हमारे मुक्त हो जाता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं यदि वो विषयी कथा के आश्रय लेता है तो विषयी मुमुक्षु बन जाता है, और मुमुक्षु यदि कथा के आश्रय लेता है तो वह मुक्त बन जाता है, और मुक्त यदि कथा के आश्रय लेता है वह भगवत लीला में प्रविष्ट हो जाता है। मुक्त पुरुष मुक्त आत्मा कथा कहता नहीं है, जैसे हम लोग कथा कहते हैं, मुक्त आत्मा तो लीलाओं में प्रविष्ट होकर के कथाओं को कहता है। मुक्त आत्मा कथा कहता नहीं है, वो लीलाओं को देखते हुए प्रविष्ट होते हुए कथा कहता है, यह मुक्त आत्मा का स्वरूप है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मुक्त आत्मा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, ये मुक्त आत्मा है, मानते हैं कि नहीं, मुक्त आत्मा है। तो ये जब कथा कह रहे थे तो ये क्या कथा कह रहे थे? नहीं, ये लीलाओं में प्रविष्ट होते हुए कथाओं को सुना रहे थे। जैसे यहाँ पे इतना सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है, इससे पहले कृष्ण जन्म का वृतांत का वर्णन हुआ, तो कितना सुंदर कृष्ण जन्म का उपाख्यान सुनाते हैं, कितना सुंदर पुतना वध की कथा सुनाते हैं, कितना सुंदर ब्रजवासियों का कैसे गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, इन लीलाओं को यहाँ पर व्यक्त करें। देखिए यह सुनाया नहीं जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है सुखदेव जी कृष्ण जन्म के समय नंद महाराज के प्रांगण में कहीं सुख सखी बनकर के खड़े थे क्या, स्वयं देख रहे हैं इन लीलाओं को। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे सुखदेव जी इन लीलाओं को देखते हुए कह रहे हैं, ऐसे अनुभव हो रहा है। ये मुक्त आत्मा का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य है कथा सुनना, कथा न सुनना इससे बड़ा अपराध है दूसरा कुछ नहीं है। कथा न सुनना इससे बढ़कर के अपराध दूसरा कुछ नहीं होता। समस्त साधन का साध्य कथा ही होता है। एक सत्य घटना है, एक अंधे व्यक्ति थे, सॉरी एक बहरे थे, एक जन जिनका श्रवण इंद्रिय खराब हो चुका था, फिर भी वो कथा श्रवण करते थे, कथा में जाकर के घंटों घंटों बैठते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, बोला भैया आपका तो श्रवण इंद्रिय खराब है, आप तो सुन नहीं सकते, मगर आप क्यों जाके कथा सुनते हैं, क्यों कथा में बैठते हैं? उनसे लिख करके पूछा गया, वो तो सुन नहीं सकते थे ना, लिख करके उनसे पूछा गया आपके श्रवण इंद्रिय खराब होने के बावजूद आप कथा में क्यों बैठते हैं? उन्होंने लिख करके बताया। उस सज्जन ने लिख करके कहा कि भैया हम उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, हमारे तो श्रवण इंद्रियां खराब है तब भी हम कथा में घंटों घंटों बैठते हैं, जिनका श्रवण इंद्रिय अभी अच्छा है उनको कथा सुनना चाहिए, उनको ये शिक्षा देने के लिए हम कथा में बैठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कथा सुनना, हरि कथाओं का श्रवण करना ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन है, इससे बढ़कर के जीव के अंतःकरण की शुद्धि का जो साधन है शास्त्र में कई प्रकार से बताया गया। इस संसार में हम सभी के हृदय में कितने सारे गंदगी है, हमारे हृदय की शुद्धि के शास्त्र में बहुत से साधन बताया गया है, परंतु इन समस्त साधनों में से सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, हृदय के चित्त का शुद्धिकरण का साधन सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कथा श्रवण, इससे बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं। एक साधक का साध्य कब माना जाता है? एक साधक का सार्थकता कब मानी जाती है? जब उसकी चित निर्मल हो जाए, है कि नहीं? हम सब साधन कर रहे हैं, हम सब भजन कर रहे हैं, किसी लिए हमारी चित पवित्र हो जाए। तो एक साधक का साध्य तब माना जाता है, फल तब माना जाता है जब उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाए। महाराज बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत जप कर रहा है, बहुत तप कर रहा, खूब मंगलारती कर लिया, खूब तीर्थयाटन कर लिया, यदि उसके हृदय अभी पवित्र नहीं हुआ है, हृदय यदि चीत यदि शुद्धि नहीं हुआ है, तो क्या किया उसने? कोई लाभ है? कोई लाभ हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं है। कहने का अर्थ यह है, समस्त साधन का साध्य यह होता है, चित्त का शुद्धि। जीव के अंतःकरण के शुद्धि का शास्त्र में बहुत से साधन बताए गए हैं, और इनमें से सर्वोत्कृष्ट साधन है कथा श्रवण करना। भागवतम में एक बात, एक श्लोक आया है, कहा जाता है, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तत्तो ह्यवधराणी विधुनोति सुहृत्सताम। सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जैसे जीव भगवान के विषय में कृष्ण कथाओं को सुनता है और कहता है, यहाँ पे इस श्लोक में कर्तृवाच शब्द का उपयोग किया गया है। संस्कृत जो जानते हैं वो समझ सकते हैं, कर्तृवाच शब्द का उपयोग किया गया है। कृष्ण शब्द कर्तृवाच है और निवृत्तिवाचक शब्द है शुद्धि, दो शब्द उपयोग किया गया है इस श्लोक में। सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तत्व ही भद्राणी विधुनोति। धुनोति शब्द यह कर्तावाचक है और कर्तृवाच शब्द है कृष्ण। ये संसार में जितने भी साधन है हृदय की शुद्धि के लिए, इस समस्त साधन का कर्ता कौन है? कौन है? जीव है, हम स्वयं है। हृदय शुद्धि का जितने साधन शास्त्र में बताया गया है, इसका कर्ता दूसरा कोई नहीं, हम स्वयं होते हैं। और हमारे अंदर एक सबसे बड़ा कमी है, जीव में एक सबसे बड़ा कमी है। क्या कमी है? वो अपने भूल को कभी भूल मानता, वो हमेशा दूसरे का दोष देखता है, ये जीव का सबसे बड़ा कमी है। इसीलिए उसके हृदय पवित्र नहीं हो पाता। परंतु इन समस्त साधनों का साध्य जीव स्वयं होता है। परंतु यहाँ पे जो कहा जा रहा है, सुनतम स्वकथा कृष्ण, कर्तृवाच शब्द उपयोग किया गया है, कृष्ण करता है, और विधुनोति शब्द क्रियावाचक है। जब हम कथा श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के झाड़ू लगा करके उसके हृदय को मल को साफ कर देते। कथा श्रवण करने से उसके हृदय को भगवान विधुनों की सुहृदता पवित्र कर देते हैं झाड़ू मार्ग के। अब सीधा सीधा अर्थ है, झाड़ू मार्ग का अर्थ यह मत समझिए कि भगवान कोई झाड़ू लेकर उसके हृदय में झाड़ू लगाते, नहीं। भगवान करता है, वो आते ही हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए, अब राष्ट्रपति महोदय यहां पर आने वाले हैं, कहीं ऐसे पता चलता है कि राष्ट्रपति महोदय अब इस नगर में आने वाले हैं, तो जब राष्ट्रपति महोदय आने का यह निर्णय हो जाता है, उससे पहले, उससे पूर्व उस नगर के उस गलियों का, उस रास्ताओं का पहले से साफ सुथरा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय आएंगे स्वयं झाड़ू लेकर के उस रास्ते को साफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो आने का जैसे निश्चय होता है, तुरंत रास्ता नगर इत्यादि साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। चलो ये तो एक संसार की दृष्टि से राष्ट्रपति बड़ा हो सकता है, विरक्तों के लिए राष्ट्रपति भी बड़ा नहीं है, विरक्त को लिए वो कुछ नहीं है, वो तो एक ऐसे ही है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरा उदाहरण लीजिए कविराज गोस्वामी पाद जी की चैतन्य चरित्रामृत का उदाहरण। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया र अधिकार। जैसे सूर्य और रात्रि अंधकार, जब सूर्य नारायण आकाश में आते हैं उगते हैं तब अंधकार क्या टिक सकता है? सूर्य नारायण जैसे आते हैं करोड़ों योजन दूरी से, पहले से अंधकार मिट जाती है। वैसे ही भगवान जैसे हृदय में प्रविष्ट होते हैं उसके अंतकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये कथा तो यहां पे यही बातों का वर्णन किया जा रहा है। तथा यशोदा रोहिण्यम एकम शकटमास्थिते रेजतु कृष्ण रामाभ्यम तत्कथा श्रवण उत्सुके। रोहिण और देवकी यशोदा जी, ये दोनों ने दोनों लालाओं को अपने अंक में लेकर के बैठी हुई है उस बैलगाड़ी में, और कृष्ण कथाओं को कृष्ण लीलाओं को गायन करती करती कहती कहती सुनती सुनती, इसी में पहले ही कह दिया गया है प्रत्या यजुहु प्रत्या प्रेम पूर्वक गायन करते करते जा रही है। ये कथा का महिमा है। और दूसरा क्या है, दो बातें बताते हैं ना परीक्षित जी ने, श्रवण भक्ति के ऊपर दो चीजें बताए गए हैं इसी दशम स्कंद के अंतर्गत, इसी प्रसंग में जो क्रम से सुने हैं, जो ध्यान पूर्वक सुने हैं, उन्हें हमारी बात की स्मरण हो रही होगी कि हाँ हम पहले इन बातों को सुने हैं। इसी प्रकरण में वर्णन हुआ है दो उद्गारे, और एक उद्गार दिया गया है कथा सुनने के ऊपर। जब महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, पांच दिन बीत चुका था, यहां तक जो पहुंचे हैं ना ये पांचवें दिन की कथा है, सात दिन भागवत सुने परीक्षित जी ने, तो पांचवें दिन दशम स्कंद में चतुर्थ दिवस प्रविष्ट हो गए थे। यह जो कथा चल रही है ये पांचवें दिवस का कथा है। जब कथा सुन रहे थे सुखदेव जी ने एक बार बीच में पूछा, इसी भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत प्राप्त होता है, सुखदेव जी ने एक बार पूछा, क्या पूछे? राजन आप तो राजमहल में रहते थे, बहुत अच्छे अच्छे भोज्य वस्तु का सेवन करते थे, न जाने क्या क्या वस्तु आपने वहां ग्रहण करते होंगे, तो आप यदि आपको यदि भूख लग रहा है प्यास लग रहे हो तो आप जाकर के कुछ भोजन ग्रहण कराइए, कुछ पी करके आ जाइए, जल जुला इत्यादि। राजा ने मना कर दिया, बोले कि महाराज इसी जल पीने के चक्कर में तो हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, ऋषि के गले पर सर्प डाला आया इसी जल पीने के चक्कर में, अब दोबारा क्यों? अब आप हमें कथा अमृत पिला रहे हैं, अमृत छोड़ करके भला कोई जल पीने जाएगा? हम तो कृष्ण कथा अमृत का पान कर रहे हैं, जल क्यों पीने जाए? चलो ठीक है, अब दशम स्कंद के अंतःकरण में क्या वर्णन प्राप्त होता है, ये तो भागवत की बात थी। दशम स्कंद में क्या बात प्राप्त होती है? सुखदेव जी ने एक बार पूछा, राजन आप यह बताओ कथा सुनने से आपको लाभ क्या हुई? कथा सुनने से आपको क्या लाभ हुआ? अब आप सब सुनिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, जबकि पिछले बार भी इसका चर्चा हो चुका है, परंतु संक्षेप में हम चर्चा किए थे। आज के प्रकरण के अंतर्गत, प्रसंग के अंतर्गत यह बात आ रही है, इसलिए हम दोबारा इस बात को स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। कथा सुनने से लाभ क्या होता है? स्वयं परीक्षित जी ने उसका उद्गार में कहते हैं, यत् शृणोति पेत्य रतिर वितृष्णा सत्यम च शूद्ये त्यचिरेण पुंसा भक्तिर हरौत पुरुषे च सक्षम तद्देवहारम् वदमन्यसे चेह। चार चीज की प्राप्ति होती है कथा सुनने मात्र से। प्रथम प्राप्ति होता है हृदय की तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत बड़ा करोड़पति है, यदि उसकी हृदय में अभी भी संसार के प्रति तृष्णाएं नहीं समाप्त हुई है, वो एक नंबर की भिकमंगा है, एक नंबर की भिखारी माना जाएगा, उसे दरिद्र माना जाएगा यदि तृष्णाएं नहीं चली गई। कंजूस मखीचूस कहते हैं ना कोई कोई इतने कंजूस होते हैं, इतने लोभी होते हैं। मखीचूस किसे कहते हैं जानते हैं? एक बार एक व्यक्ति खीर खा रहा था, उसमें एक मक्खी गिर गया, तो उसने मक्खी को उठाया, देखा कि मक्खी के टांगे में भी दो बूंद दूध लगे हैं। उसने सोचा कि अगर फेंक दूं तो दो बूंद दूध वेस्ट चला जाएगा, तो मक्खी के पैर में जो दो बूंद दूध था उसे चूस करके मक्खी को फेंक दिया उसको मक्खी चूस कहते हैं। यह है कंजूस मक्खी चूस। तो कहने का तात्पर्य यह है जब हृदय की तृष्णा जब तक नहीं जाती है तब तक उसे सबसे बड़ा दरिद्र माना जाएगा। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं है, चक्रवर्ती पादपुंति का में कहते हैं तृष्णा सबसे बड़ा दरिद्रता है। तृष्णा चली गई सो महाराज उसको दरिद्रता नहीं मानी जाएगी। इसी प्रसंग में रामानंदी संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत हुए हैं, जिनका नाम आप बार बार सुने हैं, सभी परिचित है, कबीरदास जी, ये रामानंदी थे। कबीरदास के प्रसंग में बड़ा सुंदर एक कथा प्राप्त होता है। एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, ये फकीर थे, कभी लंगोटी में घूमते थे, कभी ऐसे ही घूमते थे, दिगंबर थे। एक बार कबीरदास जी को किसी ने एक रुपया दिया, बाबा एक रुपया ले लो। एक रुपया किसने कबीरदास को दिया और कबीरदास जी ने वो एक रुपया लेकर के अपने कमंडलों में डाल दिए। सोच रहे थे यह एक रुपया मैं उसे दूंगा जो हमसे बड़ा फकीर हो। महाराज तुम तो लंगोटे बन के घूमते, तुमसे बड़ा फकीर और कौन होगा? उन्होंने मन में ये संकल्प कर लिया जो हमसे बड़ा फकीर होगा ये एक रुपया हम उसको देंगे। ऐसे विचरण कर रहे थे। एक दिन कबीरदास जी ने देखा एक राजा अपने समस्त सैन्य सामंत के साथ युद्ध करने जा रहे थे। जब युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने राजा को पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि युद्ध करने जा रहे हैं। उसने कहा कि क्यों, आपके पास क्या धन धान्य की कमी नहीं है? बोले है, तो फिर क्यों युद्ध करने जा रहे हैं? ना उस प्रदेश के राजा को यदि हम जीत जाएंगे तो हमारे पास और बहुत से धन संपत्ति हो जाएगा, हम और वैभवशाली हो जाएंगे। कबीरदास ने सोचा इसके मतलब अभी यह व्यक्ति के इस राजा के हृदय में तृष्णा समाप्ति नहीं हुई है, इसकी तृष्णा नहीं गई हुई है। तो तृष्णा जिसके हृदय से नहीं गई है उसके पास भले कितना वैभव हो उससे बड़ा दरिद्र संसार में दूसरा कोई नहीं है। कबीरदास जी ने क्या किया, एक रुपया निकाले और राजा को कहा हाथ दिखाओ बाबा, हाथ दिखाए तो राजा के हाथ में एक रुपया दे दिया। राजा ने कहा ये क्या? उसने कहा कबीरदास जी ने कि राजन हमको ये एक रुपया एक दिन एक बाबूजी ने दिया था भिक्षा में, और हम ये एक रुपया आपको दे रहे हैं भिक्षा में। बोले क्यों, इतना बड़ा तिरस्कार हमारे? बोले कि राजन मैंने मन में संकल्प कर रखा था कि जो हमसे बड़ा फकीर निकलेगा हम उसको ये एक रुपया देंगे। इतना सुनते राजा तो गर्म हो गया, बोला अरे तुम लोग फकीर लोग बहुत दुष्ट होते हो, एक तो मेरे रास्ता में अवरोध डाला, फकीरों का दर्शन यात्रा के समय सही नहीं है, ये धनियों की दृष्टि की बात हम कर रहे हैं, कामियों की दृष्टि की बातें कर रहे हैं। महाराज यात्रा के समय साधु पुरुष का दर्शन हो जाना इससे बड़ा मंगल और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। परंतु कामी विषय लोलुप व्यक्ति के हृदय की बात होता है, उसकी चित्त का यह बात होता है, किसी संत का यदि दर्शन कर दे वो बहुत बड़ा अशुभ मानते, कहते फकीर का दर्शन हो गया, न जाने हमारे अब कार्य में सफलता प्राप्ति होगी या नहीं, संदेह है। तो राजा ने कहा तुम फकीर हो और फकीर होकर के तुम धन धान्य की बात करते हो। अरे राजा तू कहा तेरे पास कोई धन ही नहीं, खुद लंगोटी में घूमता है और हमें कहता है कि फकीर की बातें हमें सुनाता। अरे तू क्या जानता है धन धान्य की सुख सुविधा का, मैं राजा हूं। राजा तेरे पास क्या है, तू तो खुद ही फकीर है, तुझे कहां अनुभव है इस धन संपत्ति का। कबीर जी ने हंसते हुए कहा राजन हमारे पास जब धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, जब खाने के लिए एक रोटी नहीं होता, तब हम हंसते हंसते राम नाम का जाप कर लेते हैं, और जब कृष्ण की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, अच्छे वस्त्र का प्राप्त होता है, तो प्रभु के देन समझ करके हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों हमारी अवस्था है। परंतु तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुम दूसरे प्रांत के राजा को हराने जा रहे हो, इसलिए तुमसे बड़ा फकीर दूसरा कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है हृदय की तृष्णा न जाना, इससे बड़ा फकीर, इससे बड़ा भिखारी दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकरण में बड़ा सुंदर कथाएं आती है शास्त्र में। नभाजी प्रियादास जी वर्णन करते हैं राजस्थान में चारण जाति के लोग होते हैं। एक चारण जाति के एक भगत थे जिनका नाम था ईश्वरदास। ये बहुत धन संपत्ति इनके पास था, बहुत धन धान्य से पूरी थे, बहुत वैभव थे इनके पास, परंतु इनको संत सेवा गो सेवा इतनी अच्छा लगता था, महाराज अपने जीविका काम धंधा बंद करके संत सेवा और गो सेवा में समस्त धन संपत्ति को लुटा दिया। उस गृहस्थ ने समस्त संपत्ति को लुटा दिया। अब कब तक एक व्यक्ति बैठे बैठे संत सेवा करे गो सेवा करे, कब तक वो उसके पास धन रहेगा, एक दिन तो समाप्ति हो जाएगी। तो आखिर उसकी धन संपत्ति सब समाप्त हो गया चरणदास के। ये बड़ा प्रेमी संत थे, बस संत सेवा करते थे, खुद भजन गाते थे, कथा कहते थे, सुनते थे, बस ये उनका धर्म था। तो सब कुछ लुटा दिए, एकदम दरिद्र बन गए, फकीर बन गए, ऐसी स्थिति हो गया। अब ये जो भजन गाते थे तब इनके भजन सुनने के लिए भगवान स्वयं बाल गोपाल स्वरूप में आकर के उनके गोद में बैठ जाते थे। ये घटना जो हम आपको सुना रहे हैं ये कोई सत्ययुग की बात नहीं कह रहे हैं, त्रेतायुग की बात नहीं, इस कलिकाल की घटना है, लगभग 400 वर्ष पूर्व की घटना है, सत्य घटना है। राजस्थान की चारणदास के घर भी आज है जहां पे लीला घटी थी। तो चारणदास जी जब भजन गाते थे, ईश्वरदास जी स्वयं गोविंद बाल गोपाल के रूप में आके उनकी गोद में बैठ जाते थे और भजन के उपरांत कहते थे ईश्वरदास हमसे कुछ मांग लो, हम कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। परंतु ईश्वरदास कहते थे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा चारण बेटा तुम लेने की बात में इतना घबराते क्यों हो, तुम लेने की बात में इतना घबराते क्यों हो, दुनिया के लोग तो हमारे पास लेने के लिए आते हैं, मंदिर हमारे दरबार हमसे मांगने के लिए आते हैं। राज सत्य बात यही है, आज हम तब तक मंदिर नहीं आते जब तक हमारे हृदय में कोई कामना न हो। जिस दिन कोई कामना होती है, कोई संकट आ गया, कुछ मांगने की बात आ गई, कुछ इच्छाएं हैं, उसे पूर्ति करने के लिए भगवान के मंदिर आ जाते हैं और भगवत भक्ति को स्वीकार करते हैं। चाहे कुछ भी हो उत्कृष्ट है, माना जाता अच्छा है, उत्तम है। शास्त्र जब उत्तम कहता है तो दास का क्या अधिकार है उसका तिरस्कार करे, शास्त्र भी उसका प्रशंसा करता है। ये न के न प्रकार न, किसी प्रकार से वो भगवत भक्ति में संयुक्त हुआ तो कल्याण तो हो ही जाएगा। तो ये कहते हैं चरणदास ने कहा कि प्रभु हम लेके क्या करेंगे धन धान्य आपसे। अब उन्होंने कहा कि लेने की बात को इतना घबराते कि चरणदास ने कहा कि प्रभु एक बात हमें बताइए, यदि मैं आपसे मांग लूं, यदि मैं आपसे मांग लूं, आप कह रहे हैं कि कुछ चाहिए तो ले लो मांग लो, और यदि आपसे मैं अपना इच्छा की पूर्ति कर लूं तो कल क्या आप जैसे आज आकर के अपने दोनों वरदहस्त अपने मस्तक पर रख करके कहते हैं चरण ईश्वरदास हमसे कुछ मांगो, तो क्या कल आप आकर के ऐसे हमारे मस्तक पर हाथ रख करके कहेंगे आपकी दर्शन प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा कि अब इसकी जरूरत क्या है, बस तुम्हें चाहिए था हम दे दी, बस हो गया छुट्टी तुम्हें, तुम अपना लो, लेकर के खुश रहो, हम दे करके खुश हैं, इसमें फिर और आने जाने की और बात कहाँ रहे। चरणदास ने कहा कि प्रभु बस हम आपके दर्शन केवल चाहते, आप त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिभुवन के नायक लक्ष्मीकांत रमापति नारायण स्वयं आप हमारे गोद में आकर के अंक में बैठ करके आप हमारे कथा श्रवण करते, भजन श्रवण करते, इससे बढ़कर के सुख, इससे बढ़कर के और हम आपसे क्या मांगे, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा बड़ा विचित्र भगत है, भगवान रोज कहते मांगो मांगो, ये कहते नहीं चाहिए, भगवान चले गए। फिर दूसरे दिन आए भगवान, फिर भजन सुनने के बाद में कहा ठाकुर जी ने, भगत मैं जानता हूँ तुम निष्किंचन भगत हो, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, परंतु भगत तुम हमारे प्रसन्नता के लिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मेरे खुशी के लिए तुम कुछ मांगो। और भक्त तो प्रेमी तो सदा सर्वदा प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए कृत्य करता है। भक्त फंस गया, भक्त तो अड़चन में पड़ गया, अब ये सोचने लगे अब तो भाई कुछ मांगना पड़ेगा ठाकुर जी से, ये भगवान देना चाहते, दे के खुश होना चाहते। अब इस चरणदास ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो आप यह हमें दे दीजिए, आज के बाद में आप यह शब्द हमें नहीं कहेंगे कि कुछ मांगो, देना चाहते हैं तो बस ये दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बड़ा विचित्र भगत है, हम इसको इतना कहते कि मांगो मांगो और ये कहता नहीं चाहिए, बड़ा आश्चर्य। अब भगवान ने तीसरी परीक्षा लिया, अब रोज भगवान आते थे कथा श्रवण करने, उनके भजन सुनने, अब ठाकुर जी स्वयं भी आए नहीं और जो लोग आते थे उनके भजन सुनने के लिए, लोग आते हैं ना साधु संतों के पास तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, गुरु वैष्णव के पास तो भजन गाते थे तो कुछ ना कुछ लेके आते थे, अब ऐसा ठाकुर जी ने कर दिया कि लोग भी उनके पास कोई नहीं आए भजन सुनने और स्वयं भगवान भी नहीं आए। चरणदास के घर पे महाराज प्रियादास जैसा वर्णन करते अपने टीका में, जहां पे यह प्रसंग आती है, कहते चरणदास के घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं चेता, 3 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं चेती। पहले से तो धन ध्यान सब संत सेवा में समाप्त कर चुके थे, गो सेवा में सब लगा चुके थे, 3 दिन तक उनकी चूल्हा नहीं चेती। बच्चे रोने लगे कि माँ हमें भोजन दो भोजन दो, पत्नी आके कहने लगी बच्चे रो रहे हैं। चरणदास ने कहा भगवान चूल्हा चेता दो और उसमें हंडी बिठा दो, उसमें पानी भर दो, ऊपर ढाकनी लगा दो, पानी जब भाप बनने लगेगा ढाकनी थर थर कांपने लगेंगे, बच्चों को कह देना भोजन बन रहा है। तो पत्नी ने भी ऐसी थी, पत्नी ने ऐसे कर दी, चूल्हा चेता करके हंडी बिठा करके उसमें जल भर दिया और ढाकनी लगा दी। बच्चे रो रहे थे तो कहते थे चुप, जो रोएगा उसे भोजन नहीं बनेगा, देखो अन्न बन रहा है। बच्चे तुम्हारा भोजन की लालच से चुप हो गए, भोजन की इच्छा से बच्चे सब चुप हो गए। अब तो बड़े ध्यान लेकर के करताल लेकर के पत्नी ईश्वरदास बच्चे सबके सब भजनस्थ हो गए, भजन में लग गए, कीर्तन में लग गए। अब हुआ किया कई दिनों से उपवास था, इसीलिए उपवास थे, ठाकुर जी के भजन में उनकी समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। अब ठाकुर जी के सिंहासन द्वारकाधीश के आसन वहां हिलने लगा, कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी के आसन हिलने लगा, ठाकुर जी स्वयं खिचड़ी के सामग्री लेकर के आए और चरणदास के घर पर पहुंचे, देखे कि सब भजन में लगे हुए हैं, सत्य घटना है, स्वयं खिचड़ी के जो यारे हैं, खिचड़ी के यारे क्या होती है, दाल नमक सब्जियां दही, ये खिचड़ी के यारे होती है, इस खिचड़ी के समस्त यारे के साथ प्रियदास जैसा वर्णन करते बड़ा सुंदर, खिचड़ी के यारे के साथ भगवान ने सहसा प्रकट हुए चारण के घर पर और खिचड़ी स्वयं निर्माण करते बनाते हैं, सबके सामने पतल लगा दिया और खिचड़ी परोस दिया। परोस करके ठाकुर जी कहते, अरे भगत अब तो आंखें खोलो, खिचड़ी ठंडा हुए को जा रहा है, ठंडा हो जाएगा, अब तो नेत्र खोलो। अब चरणदास नेत्र खोलते हैं, देखे साक्षात गोविंद को अपने दरबार में। चरणदास रोने लगते हैं, भगवान भी आंखों में आंसू भरते हुए कहते, भगत तुम्हारे घर पर 3 दिन तक चूल्हा नहीं चेता, तो मैं द्वारकाधीश हूँ, मेरे घर में भी मैं भी 3 दिन से उपवास हूँ। भगवान ने कहा, नाभाजी ने यहाँ तक वर्णन किया है। कहते हैं भगवान उसी दिन स्वयं कहे कि भगत मैं भी भूखा हूँ, तो ईश्वरदास के उसी एक पत्तल पर ठाकुर जी ने बैठ करके स्वयं खिचड़ी का आस्वादन किया। यह कहने का तात्पर्य यह है, कथा सुनने से हृदय की तृष्णाएं समाप्ति हो जाती है, दूसरा इंद्रियां पवित्र हो जाती है, तीसरा भक्ति हरो भगवान के चरणों में सहसा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, चतुर्थ फायदा तत्पुरुषे च सक्षम भगवान के भक्तों के प्रति प्रीत हो जाती है। तो आज इस श्लोक में प्रमुख बात यह है, बताया जाता है यदि हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारी जीवन का असली साध्य कथा ही बनता है। देखिए कथा कैसा है जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कथा वो है भगवान को प्रसन्न करना, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है कथा। अब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रृंगार कर रहा है, आपने हाथ में शीशा लिया, आपने शीशा समझते ना मिरर, आईना, दर्पण, आपने हाथ में दर्पण लिए और आपने अपना श्रृंगार किया। जब आप अपना श्रृंगार करते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो आपको दर्पण में भी अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार दिखाई देता है कि नहीं देता है? आपने अपना श्रृंगार किया तो प्रतिबिंब का श्रृंगार अपने आप हो गया। और यदि कोई व्यक्ति अपना श्रृंगार छोड़ करके उस शीशे में, उस दर्पण में प्रतिबिंब का श्रृंगार करना चाहे, जैसे श्रृंगार के वस्तु होती है तेल, और आजकल न जाने क्या क्या लगाते, क्रीम ट्रीम पाउडर वाउडर सब क्या क्या यूज करते हैं, वो सब श्रृंगार की वस्तु होता है। अब यह वस्तु यदि उस शीशे में आप उस प्रतिबिंब पर लगाएं, तो क्या वो प्रतिबिंब को आप श्रृंगार कर सकते हैं? नहीं। हम स्वयं का श्रृंगार जब कर देते हैं, जब बिंब का श्रृंगार किया जाता है, तो प्रतिबिंब का श्रृंगार स्वतः हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि हम भगवान के श्रृंगार करते हैं तो हमारे श्रृंगार अपने आप हो जाता है। यदि हम भगवान के कथा श्रवण करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के नाम जाप करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, भगवत लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवत भक्तों का सेवा करते हैं, गोमाता वैष्णव का सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव का सेवा में लगे हुए हैं, तब कहते हैं अपने आप हमारे श्रृंगार बन जाता है। ये संसार में हर एक व्यक्ति जी नहीं रहा है, बह रहा है। एक व्यक्ति पानी में बह रहा था, एक व्यक्ति देखकर ताली बजा रहा था, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत अच्छा स्विमिंग कर रहा है। उसने कहा कि भाई मैं पानी में बह रहा हूँ, स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, तैर नहीं रहा हूँ। वो बह रहा था, दूसरा ताली बजा रहा था, कह रहा था कि तैर रहा है कितना अच्छा। तो कोई कह सकता है कि हम 50 साल इस संसार में जी रहे हैं, 50 साल हो गया हमें रह रहे हैं, वो जी नहीं रहा है, 50 साल से बह रहा है। 50 साल से इस भवसागर में वह व्यक्ति बह रहा है, जिना तो उसको माना जाएगा जिस दिन जिना, तो उतना समय उसके जीवन का माना जाएगा जितना समय उन्होंने हरि कथाओं का श्रवण किया, उतना समय उसका जीवन में जीना माना जाएगा, बाकी समय वो तैर रहा था, वो जी नहीं रहा है। इसीलिए कथा सर्वोत्कृष्ट साधन है। तो यहाँ पे इसी बात को सुखदेव गोस्वामी पाद इन श्लोकों में कहते, तथा यशोदारोहिण्यम एकम सकट मास्थित एरेजतु कृष्ण रामाभ्यम तत्कथा श्रवण उत्सुके। यशोदा और रोहिणी इन दोनों ने कृष्ण और बलराम को अपने अंक में लेकर के बैलगाड़ी पर स्थित है और भगवत लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। जीवन का सर्वोत्तम साधन यही है, भगवत कथाओं का श्रवण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर दोहे में कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सुर नाना। तो स्वामी जी ने कहा है, कथा सुनने के लिए हमारे कान समुद्र की तरह हो जाना चाहिए। भगवत कथा ही एकमात्र हमारे जीवन का साध्य है। परमात्मा से मिलाना, भगवान से मिलाना, भगवत लीलाओं में प्रविष्ट कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन है भगवान के विषय में सुनना और कहना। जो यहाँ पे इतने उत्तम कोटि के भक्त होने के बाद में भी, उच्च कोटि के मुक्तात्मा होने के बावजूद भी देवकी सरी यशोदा रानी और रोहिणी जी, इन दोनों ने कृष्ण कथाओं का गायन कर रही है। और भी आगे को आपको सुनने मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, ये दोनों का स्वभाव ऐसे लग रही थी मानो कि ये कृष्ण बलराम के सेवा से कभी च्युत नहीं होते, कभी अलग ही नहीं होते। या तो प्रत्यक्ष कृष्ण बलराम के सेवा में लगे हुए हैं, एक भक्त का स्वरूप समझा रहे हैं। कोई यदि अपने आप को भक्तिनी कहती हो, अपने आप को भगत कहता हो, तो हम सभी को कर्ण खोल करके ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में भगवत भक्ति से, भगवत सेवा से, कथा श्रवण से विमुख है, तब तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा नुकसान है। यह ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। जो अपने आप को भक्त कहता है, अपने आप को वैष्णवी कहती है, उसे यह ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। उसका जीवन का यही लक्षण होना चाहिए, उसका जीवन का सर्वोत्कृष्ट क्रियावृत्ति पर यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो वो सदा सर्वदा भगवान की लीलाओं में चिंतन मग्न रहे, चलते फिरते काम काज करते, कुछ भी क्रिया को करते समय भगवान के स्मरण करते रहे। या तो दूसरा, उसे जब राहत मिलता है, पहले सेवा, जब उसको जब ही उसके पास भक्त है, तुरंत वो भगवान के सेवा में लग जाए और वहां से छुटते ही तुरंत भगवान के चिंतन में लग जाए। यानी कि 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रतिपूर्वकम, 24 घंटा ऐसे लगे रहना चाहिए। यही भक्त का एक स्वरूप है, जो यहाँ पे इसी प्रकरण में हमें शिक्षा प्राप्त होता है। यही देवान को प्रणाम करते हैं। समय हो गया है, आज्ञा प्राप्त हुआ था 10 बजे तक। ऐसे तो कथा कहने में बड़ा आनंद आता है, 10 घंटा कह ले तो भी हृदय की पूर्ति नहीं होती है। कहने सुनने में प्रवृत्ति बन गया है, पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की कृपा, पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज के आशीर्वाद और हमारे बाबा महाराज की कृपा से दास को यह प्रवृत्ति प्राप्त हो गया है। कितना भी कहने के लिए कह दो, बैठ के कहते रहेंगे, परंतु विधि के अनुसार समय का ही ध्यान रखना पड़ता है। आज्ञा प्राप्त हुआ था 10 बजे तक, वाणी को विराम करते हैं। और यदि हमारी वाणी में कहीं भूल चूक हो गई हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, आप लोग हमें क्षमा करेंगे, दास का प्रणाम है। और किसी को यदि कोई इस प्रसंग के अंतर्गत कोई तो प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना चाहेंगे तो आप प्रश्न करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की।
लेक्चर बंद की चालू बंद कर दिया क्यों बोलो जी।